प्रैक्टिकल चीज़ जो सवालों में आती है जहन में वो फिर बता देती हूँ कि अब करें क्या। हर चीज़ पे तो तस्वीर है, बच्चों के कपड़ों पे तस्वीरें, खाने पे तस्वीरें, कपड़े पे, ये वो। पहली बात है इत्तकुल्लाह मस्तता, तो अल्लाह से डर जाओ जिस हद तक तुम डर सकते हो। आप शायद आज के दौर में मेरा ख्याल है कि हनी की बोतल भी नहीं ला सकते जिस पे तस्वीर नहीं है ना। इन चीज़ों के अंदर इतना खो जाएं कि असल दीन इनको बना लें और ना बिल्कुल गाफिल हों। पहली सूरत मिसाल दे रही हूँ, कोई रोटी ली, आप रोटी लेने गए, उस लिफाफे के ऊपर कोई भी उन्होंने फिगर बनाया हुआ है, बिलफर्ज आप रोटी निकालें, लिफाफा फेंक दें, आपकी मर्जी है। कुछ लोग इन चीज़ों में इतने पिकी हो जाते हैं कि बाज़ दफ़ा बिल्कुल सारा कुछ इसमें ले लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ गफलत, और मैं इसमें ख़ास तौर पर माओं को कहूँगी कि जो इंतहाई नासमझी का मुजाहरा करती हैं कि अपने बच्चों के बर्तन खरीदती हैं तो तस्वीरों वाले, फीडर हैं तो उस पर तस्वीरें, बोल है तो उस पर तस्वीरें, चम्मच है तो उस पर तस्वीरें, कपड़े पहने उस पर तस्वीरें। शैतान क्यों ना बच्चों को रुलाए। आप कहते हैं बच्चे रोते बहुत हैं, इसलिए रोते हैं कि आपने प्रोटेक्शन नहीं रखी। एक कल्चर ये होना चाहिए, मुस्लिम कल्चर नहीं है इस तरह तस्वीरों को सजाना संवारना। तो जहाँ तक मुमकिन है बच सकें बच जाएं, जहाँ बच नहीं सकते कराहत के साथ। अब आप एक सीरियल लेके आते हैं, हलाल है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल मार्केट में कोई एक सीरियल भी है जिसपे तस्वीरें ना हो। इवन अपने मुल्कों की भी बात होगी, अल्लाह आलम आप क्या करें, लाएं सीरियल निकालें, वो उसमें सील पैक में तो होता है, आप किसी खूबसूरत से जार में डालें, डब्बा फेंक दें, बस सिंपल सी बात है। आप जेली ला रहे हैं, आप बिस्किट ला रहे हैं, कुकीज़ ला रहे हैं, कोशिश करें कहीं वाकई कोई तस्वीर बहुत ही बुरी अट्रैक्टिव लगती है तो उसको थोड़ा सा ऊपर पेंसिल से लगा दें। एक और चीज़ जो हमें सही रिवायात से मिलता है कि तस्वीर का जो असल इमेज है ना वो सर है, ये जो सर होता है। आप इमेजिन करें कोई भी किसी लड़की की या गुड़िया की तस्वीर है, आप उसका सर ऊपर से काटें नीचे फ्रॉक रह जाएगा। तस्वीरों में अमूमन फ्रॉक या डमी है। अगर कोई ऐसी आपके बच्चों के कपड़े हैं घरों में, या आप पहन चुकी हैं या खरीद चुकी हैं, आप फेंकना नहीं चाहती, बस उसके चेहरे को ख़राब कर दें, पेंसिल सुई से धागे से लेके कुछ उसके निशान मिटा दें, कोई पुन्ना लगा दें, कोई स्टिकर लगा दें, और आइंदा कोशिश करें। वाकई जब हम हर चीज़ अपने आप को बहुत ज़्यादा अप टू डेट रखना चाहते हैं तो हमें ऐसी कम चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ऐसे मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ तस्वीरों को छोड़ दें, बच्चियों के तो वैसे इतने मायूब कपड़े लोग आजकल लेते हैं, खुले नेक्स हैं, खुली बाजू हैं, स्लीवलेस हैं, टांगे नंगी हैं। तो ये एक मुस्लिम कल्चर है, इसके ऊपर इंसान को बहुत ही ज़्यादा अपने एहतियात करनी चाहिए। रिवायात ऐसी भी मिलती हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ तस्वीरों का एहतराम या उनकी बातें मिलती हैं। चंद एक आपके सामने रखती हूँ ताकि आप इस मौजू को दोनों एंगल से समझ सकें, ये ना हो कि आप सोचें कि एक ही तरह की चीज़ है। फिर इसी में वो बारबीज और गुड़ियाओं की भी बात जहन में आती है। तो गुड़िया बनती है, हज़रत आयशा के दौर में आयशा गुड़िया से खेलती थी, रूई की गुड़िया होती थी, ऐसे कपड़े में भर के उसका एक छोटी सी चुटिया डाल दी, कुछ कर दिया, कोई हरज नहीं, बच्चे खेलें, तोड़ें फोड़ें, इधर फेंके उधर फेंके, कभी किसी ने उसका सर तोड़ दिया, हरज नहीं। लेकिन आप इससे बारबी को नहीं जायज़ कर सकते कि जो बिल्कुल फाहिशा औरत की तस्वीर है। कार्टून्स के अंदर जो गंदी तस्वीरें होती हैं, अगर आप खुद देख लें तो मेरा ख्याल कभी भी आप इस चीज़ की बात नहीं करेंगी। तो रिवायतें चंद दूसरे मौजू की भी सुन लीजिए। अबू तलखा अंसारी की रिवायत है कि जिस कपड़े में तस्वीर कड़ी हुई हो इसका पर्दा लटकाने की इजाज़त है। सही बुखारी की रिवायत है ये। हज़रत आयशा की ये रिवायत के तस्वीरदार कपड़े को फाड़ कर जब उन्होंने गद्दा बना लिया तो अल्लाह के नबी ने उसे बिछाने से मना ना फरमाया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। ममानियत इस तस्वीर की है जो नुमाया मुकाम पर नसब की गई हो, ना कि उस तस्वीर की जो फर्श के तौर पर बिछा दी गई हो। ये मुस्तन अहमद की रिवायत है। अब देखिए कि ये सारी रिवायतें पिछली रिवायतों की नफ़ी नहीं करती, ये एक उसका हमें दूसरा एंगल दिखाया जा रहा है। सिर्फ ये है कि कपड़े पर तस्वीरें बनी हो तो जो इंसान उसको ले चुका है उसको क्या करे, ये इस ज़िम्मन में पड़ी जाती हैं। फिर आप देखिए कि एक और अमल हज़रत अबू तलहा का है, तिर्मिज़ी और मौता में रिवायत है कि तस्वीरदार पर्दा लटकाना तो दरकुनार वैसा फ़र्श बिछाने में भी कराहत महसूस करते थे जिसमें तस्वीर हों। हज़रत आयशा और सालम बिन अब्दुल्ला की रिवायात से ये जवाब मिलता है कि अगर तस्वीर एहतराम की जगह पर ना हो बल्कि ज़िल्लत के साथ फ़र्श में रखी जाए और इसे पामाल किया जाए तो वो काबिले बर्दाश्त है। लेकिन इससे वो सकाफत तो नहीं निकलती जो आज हमारे यहाँ तस्वीर कशी और मुजस्मा साजी और आर्ट और फन कल्चर के नाम पे किया जा रहा है। आज आपको पता है कि मुसलमान मुल्कों में ऐसे कॉलेज हैं आर्ट्स और फन के नाम पे, और कई कई लाख रुपए की फीस उनके एक एक सेमेस्टर की, और वहाँ जाके स्टैचू सिखाते हैं। मेरी खुद अपनी बहुत करीबी कज़न ने लिया दाखिला, उसने कहा कि उन्होंने कहा बनाने पड़ेंगे, यानी यूनानी मेथ सारी सिखाते हैं और उसमें स्टैचू, फिर उसने आखिर छोड़ दिया। ये तो कतन जायज़ नहीं है जो आप हाथ से बनाए। आप अपने छोटे बच्चों को भी बताया करें ये चीज़ें। अब अगर बच्चे तस्वीर बनाते हैं, अब एक और इसमें साइड की छोटी सी चीज़ साथ जहन में आती है, आज के दौर में कंप्यूटर पर जब आप बैठते हैं लोग आपको एक्सप्रेशंस भेज देते हैं, स्माइली फेस दिस, वो एक एक्सप्रेशन है। तस्वीर जो ना असल ये कि जिसमें पूरी आंखें नाक कान एक शक्ल हो, तो अगर कोई सिर्फ स्माइल, जैसे मिसाल है गोल एक दायरा बना के एक इधर करके स्माइली फेस है, कोई अर्ज नहीं है। बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए और दूसरी तरफ भी नहीं आना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक दो चीज़ें और भी इससे आपको रिवायतें रखती हैं जिससे आप इस मौजू को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बस कहते हैं कि बच्चों के ऐसी चीज़ों से खेलना कि जिससे वो बहल जाएं और उससे अलग हो जाएं, और वो तस्वीर जिसका साया ना पड़े और दिस एंड दैट, यानी थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क है, अगर उसका सर काट दिया जाए, उसके अज्जा अलग अलग कर दिए जाएँ, तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। मेरा ख्याल है कि बात वाज़ह हो गई है। फिर जिसका जितना तकवा है, लेकिन इन चीज़ों के फतवे बाहर जाके ना दें। मुझे इंतहाई बुरे लगते हैं ये टॉपिक जब लोग खुली जगहों पे बात करते हैं। मतलब आज आप जाएं किसी दोस्त के घर, जो बेचारी हो सकता है अल्लाह को पता है हम नहीं कहते पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, तो आप जाके कह दें ये तस्वीर उतार दो यहाँ से। वो उतार भी देगी तो मुसलमान नहीं होगी क्योंकि उसने नमाज नहीं पढ़ी। सबसे पहले अपनी फिक्र करें, अपने अकीदे की करें, अपने अमल की करें, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों पर जाएंगे। लेकिन जिन गरीबों को अभी असल दीन नहीं पता, जिनको अल्लाह का ही नहीं पता, जिसको अल्लाह के अलमुसविर होने का नहीं पता, फिर आप उसके लिए दूसरी बातें कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल बात लंबी हो गई लेकिन ज़रूरी थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो चीज़ें बनाते थे उनमें से तमासील भी थी। अगली चीज़ देखिए आयत 13 में ही है, वह जिफानी कल जवाब और बड़े बड़े लगन जैसे हौज। जिफान का लफ्ज़ जो है ये जफनत उनकी जमा है, जीम फा नून इसका रूट है, पानी का बड़ा बर्तन जैसे तसला या टब। और कल जवाब, जवाब जो है ये जाबियत उनकी जमा है, छोटे हौज को जाबिया कहते हैं। मतलब ये कि पानी भरने के बड़े बर्तन ऐसे बनाते थे जिसमें छोटे हौज के बराबर पानी आ जाता था। मुराद ये कि बड़े बड़े बर्तन भी उनके लिए बनाते थे। और क्या बनाते थे? व कुदूर रासियात, और भारी देगें अपनी जगह पर पड़ी पड़ी, यानी इतनी बड़ी बड़ी देगें थी। कुदूर जो है बड़ी देग को कहते हैं, खिदरुन की जमा है, काफ के साथ कसर होगी, हंडिया को कहते हैं बेसिकली हमारी ज़ुबान में जो आती है। और रासियात एक ही जगह ठहरी रहने वाली को, पीछे पड़ा कहीं रासिया का लफ्ज़ मिलता जुलता, पहाड़ों के साथ आया था जी, रवासी, बिल्कुल वही लफ्ज़ है ये भी, रवासी। यानी इतनी बड़ी बड़ी देगें और वज़न वाली चीज़ें बनाते थे कि उनके वज़न की वजह से वो हिलाई नहीं जाती थी। बास कहते हैं कि ये देगे पत्थर से तराश के बनाते थे, जैसे हमारे यहाँ कच्ची मिट्टी की हंडिया बनती है ना, तो वो पत्थरों के अंदर बनाते थे जिसमें फिर खाना बहुत देर तक गर्म होता है। तो ये सारे काम वो जिन जो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए करते थे, ये कितनी बड़ी नेमतें थी। सोचिए ज़रा आज के दौर में पूरी टेक्निक्स और पूरी इंडस्ट्री चाहिए इन चीज़ों को बनाने और लगाने के लिए, और अल्लाह ताला ने उस दौर में हज़रत सुलेमान को ये दी। तो साथ ही फरमाए ए मलू आला दाऊद शुक्रा, और ए दाऊद के ख़ानदान वालों इन नेमतों पर शुक्र अदा करो। ए दाऊद के घर वालों, आले दाऊद किसको कहा गया? हज़रत सुलेमान को कहा गया, और आगे उनके बाद वालों को कहा गया कि इतना कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया तो अब इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन होता क्या है? वक़लीलुम मिन इबादी अश्शकूर, और मेरे बंदों में बहुत थोड़े हैं जो शुक्र गुज़ार हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पोल खुल गया हमारा। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अब देखिए कि एक ऐसा शिकवा किया कि जिसको पढ़ते हुए इंसान का सर शर्म से झुकता है। मैंने किसी इंग्लिश स्पीकर का लेक्चर सुना तो उन्होंने ये आयत पढ़ी और कहते हैं कि पूरे कुरान में से जितना इस आयत को पढ़ के इंसान को शर्म आनी चाहिए उतनी किसी और से ना आए। ये ऐसे जैसे कोई किसी को कह दे कि फलां बड़ा नमक हराम है। और शुक्र की कैफियत हम पीछे कई जगह देख चुके कि शुक्र इस हकीकत के एतराफ़ का नाम है कि फलां ने मुझे नेमत दी, और नेमत को उस देने वाले की मर्ज़ी से इस्तेमाल करना, और हर वो चीज़ जिससे देने वाला नाराज़ हो उसको छोड़ देना। अब्दुर्रहमान असलमी कहते हैं कि नमाज शुक्र है, रोज़ा शुक्र है, और हर नेक काम शुक्र है। मोहम्मद बिन क़ाब कुर्सी कहते हैं कि शुक्र तकवा और अमल सालेह का नाम है। और यहाँ देखिए कि आले दाऊद को कहा गया ना ए मलु शुक्रन, तो इससे पता चलता है कि अमली शुक्र की बात है। जो शुक्र उनसे मतलूब था वो अमल का था। ये नहीं कहा उश्कुरूनी, जैसे फर्स्ट कुरु नी अस्कुर कुमश कुरु लिए, उस कुरु नी की बजाय ए मालू शुक्रन कहकर कहा कि अमली शुक्र मतलूब होता है। और इस पे हजरत दाऊद और सुलेमान ने किस तरह अमल किया, चंद रिवायत सुनिए और फिर हम अपना भी जायजा लेंगे कि हम कैसा शुक्र करते हैं। कहते हैं कि हजरत दाऊद और सुलेमान के घर में और उनके खानदान में कोई वक्त ऐसा ना गुजरता था जिसमें घर का कोई फर्द अल्लाह की इबादत में ना लगा हुआ हो। अब इबादत का माना जरा खोल के रखिएगा, सिर्फ जाय नमाज में बैठ के इबादत नहीं होती, कौल फेल अमल की इबादत प्लस वही इताअत सबमिशन सब है, लेकिन यहाँ लिटरली इबादत का लफ्ज आता है। अफराद खानदान पर वक्त तकसीम कर दिया गया था, एक वक्त में एक इबादत कर रहा होता तो उस वक़्त दूसरा काम में लगा होता। ये तफसीर इब्ने कसीर की रिवायत है। एक और बहुत ही प्यारी रिवायत जो मुझे बजाते खुद बहुत अच्छी लगती है और मोटिवेशनल लगती है, सही बुखारी और मुस्लिम की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाजों में सबसे महबूब नमाज अल्लाह को दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। निस शब सोते यानी रात का शुरू का हिस्सा सो जाते, फिर एक तिहाई रात इबादत में खड़े रहते, फिर आखिरी छठे हिस्से में फिर सो जाते, और सब रोज़ों से महबूब था रोज़ा अल्लाह ताला को दाऊद अलैहिस्सलाम का था, जिसको सौम दाऊदी कहते हैं कि एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। कुछ लोग वाकई जब ये रखना चाहते हैं तो हम बीवियाँ ही उनको रोक देती हैं कि नहीं नहीं आप ये ना करें, कोई बेटे रखना चाहते हैं तो माएँ नहीं रखने देती। बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे अगर कोई करे तो बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जिस पर कोई इंसान रश करे तो कर सके। फिर ए मलु शुक्रन का एक और अमली इजहार देखिए। हज़रत फुज़ैल कहते हैं कि हज़रत दाऊद पर यह हुक्म शुक्र नासिल हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार मैं आपका शुक्र किस तरह पूरा कर सकता हूँ जबकि मेरा शुक्र कौली हो या अमली, यानी किस तरह आपका शुक्र करूँ और हर नेमत तो आप ही की अता कर दें, यानी जो कुछ आपने दिया है उस पर शुक्र करूँगा तो ये भी तो इस नेमत है। तो उस पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल आन शकरतनी या दाऊद, ए दाऊद अब आपने मेरा शुक्र अदा कर दिया। कैसे? कि आपने अपने आप को आजिज़ और कसूरवार समझ लिया और मेरी नेमतों का इतराफ़ कर लिया। हम भी तो कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तो असल शुक्र क्या है कि अल्लाह को मालिक हकीकी मान लो और ख़ुद को आजिज़ हकीकी मान लो, अल्लाह अकबर मान लो और ख़ुद को इन्नी असगर मान लो, ये है शुक्र। और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। एक और बड़ी प्यारी रिवायत है, तिर्मिज़ी में है, हज़रत ताबिन यसार से कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई कि मलू आल दाऊद शुक्रा तो रसूलुल्लाह मिंबर पर तशरीफ़ लाए और इस आयत को तिलावत फरमाया, फिर इरशाद फरमाया तीन काम ऐसे हैं जो शख्स इनको पूरा करेगा तो जो फजीलत आले दाऊद को हासिल हुई थी वो उसको भी मिल जाएगी। सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के नबी वो तीन काम कौन से हैं, लेना चाहते हैं आप भी? दिल में सवाल आता है कि हम भी करें तो नोट कर लीजिए। आपने फरमाया रज़ा और गज़ब की हालतों में इंसाफ पर कायम रहना। दो कैफियत इंसान की ऐसी होती हैं जिसमें वो इंसाफ नहीं कर पाता, या तो बहुत खुश होता है उसका पल्लू झुकने लगता है और या फिर गुस्से की हालत में टेम्परामेंट लूज़ कर दिए। कहीं दोनों में गुस्से में भी आए हो तो इंसाफ करना जुल्म ना करना। और दूसरा गिना और फ़क्र दोनों की हालतों में इतदाल और मियाना रवि रखना, यानी दौलत ज़्यादा हो या कम हो इतदाल से जियो, खाओ भी अच्छा पहनो भी अच्छा ओढ़ो भी अच्छा, ये नहीं कि बिल्कुल दूसरी तरफ चल पड़ो। और तीसरा खुफिया और एलानिया दोनों हालतों में अल्लाह ताला से डरते रहना। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है वो बंदा जो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होता है। और साथ ही कहा क़लीलुम मिन इबादी अश्शुकूर, पता अल्लाह को भी था कि मेरे बंदे हैं बड़े छोटे ये शुक्र नहीं कर पाएंगे, तो अल्लाह ताला हमें इन थोड़ों में कर दे। एक बुज़ुर्ग थे तो वो अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे, अल्लाह मुझे थोड़ों में कर दे। तो लोगों ने कहा ये क्या आप दुआ मांगते हैं? तो कहते क़लीलुम मिन इबादी अश्शुकूर, क़लीलुम मिन इबादी अश्शुकूर। फिर पीछे आप पढ़ते हैं कि तकवा वाले थोड़े होते हैं, हक के साथ थोड़े होते हैं। तो क्वांटिटी इज़ नॉट बल्कि क्वालिटी। हमारे यहाँ कहते हैं मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, अल्लाह ताला कहते हैं मेजॉरिटी इज़ नॉट अथॉरिटी। आखिरी आयत है सबक की, फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्दी ताकुलु मिन सअतहु फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यालमून अल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا تو پتہ نہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کی دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں۔ خوبصورت آیت ہے، کچھ مشکل لفظوں کو پہلے کھول دیتی ہوں۔ قدینہ کا لفظ تو وہی ہے قضا یقدی سے جو ہم پیچھے بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ دوسرا مشکل لفظ جو پہلی دفعہ ادھر آیا ہے وہ ہے منسا، کیونکہ ما دلاہم پہ پچھلے ہی سبق میں ہم نے بات کی تھی، دلالت والا وہی لفظ ہے، دعات لام لام اس کا روٹ ہے۔ دابت الارض، دابا بھی لفظ زمین کے لیے پیچھے آ چکا۔ تاکلو منسا تہو، اس کو دیکھ لیجیے، یہ بالکل نیا لفظ ہے، تھوڑی اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ منسا کہتے ہیں عصا یا لاٹھی کو، کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے عصا، اور بعض کہتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور نسا سے ہے، نون سین حمزہ اس کا روٹ ہے۔ کہاں پڑا یہ لفظ نسا؟ ما ننسخ من آیتن، اور ننسخا نسا کہتے ہیں مٹانے اور مؤخر کرنے کو۔ لاٹھی کے ذریعے چونکہ انسان نقصان دہ چیزوں کو دور کرتا ہے اس لیے اس کو منسا کہتے ہیں، ہٹانے والا آلہ، دور کرنے والا آلہ۔ تبینت کا لفظ با یا نون سے ہے، بین کا لفظ، اور باقی اس کے اندر کوئی شاید نیا لفظ نہیں ہے۔ دابت الارض اصل میں ادھر دیمک کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ ہے، ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت دی اور ساتھ ہی ساتھ جنات اور ہواؤں پہ بھی آپ کو قبضہ دیا۔ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ان کی موت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے کس طرح چھپایا کہ بیت المقدس کی تعمیر ابھی جاری تھی، کہتے ہیں کہ مین کام ہو چکا تھا، بس ابھی اس کا جو فائنل ٹچز تھے وہ ہونے تھے۔ تو ملک الموت جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ آپ کا موت کا وقت ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہا دھو کر اپنے کام سے فارغ ہوئے اور اپنے محراب میں آ گئے جو شیشے کا بنا ہوا تھا، کرتے کیا تھے کہ وہاں کھڑے ہو کے یہ عبادت کرتے رہتے تھے اور جنات ان کو دیکھ کر کام کرتے تھے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ مینیجر جو ہوتا ہے وہ سر پہ کھڑا رہتا ہے، یا کوئی بھی کام کرنے کروانے والا جو ہے وہ اس کام کو کراتا ہے۔ جب یہ اس حالت میں تھے تو موت کا فرشتہ آیا اور ان کی جان چلی گئی۔ ان کا دل کیا تھا اور ان کی دعا کیا تھی کہ جو کام ہوا یہ ادھورا نہ رہے، کیونکہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو دعا کریں کہ شروع تو ہوا یہ اپنے کمال تک پہنچے، اتمام تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے کی کہ موت تو آ گئی لیکن یہ وہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، جو عصا تھا ان کا وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ روایات میں آتے ابن عباس فرماتے ہیں ایک سال تک یہ وہیں اسی طرح رہے۔ جب بیت المقدس پورا ہوا، سب ہو گیا، تو اس میں پھر دیمک، جس کو یہاں ہمارے زبان میں لفظ میں دیمک کہتے ہیں نا، اصل میں یہ فارسی کا لفظ ہے، دیوک دال یا واو کاف کہتے ہیں، گھن کا کیرا بھی کہتے ہیں، یہاں اس کو دابت الارض کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ دیمک نے عصا کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، جو جب اندر سے لکڑی کھوکھلی ہوئی عصا کا سہارا ختم ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب گرے تو جنات کو پتا چلا۔ فلم مخر تبینت الجن، جب سلیمان گر پڑے پھر جنوں کو پتا چلا، کیا اوہو یہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں اگر پہلے پتا چل جاتا، اللو کانو یعلمون الغیب، اگر ہم غیب جانتے، جن کہتے ہیں اگر ہمیں پتا چلتا یہ مر چکے، ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم رسوا کن عذاب میں نہ رہتے۔ کون سا عذاب ہے یہ رسوا کن؟ وہ محنت کا، مزدوری کا، زمین بنانے کا۔ تو اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس موت سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ظاہر کیا ہمارے لیے، اس میں عبرت کے لیے جو بات کی گئی۔ نمبر ایک، کہ اس دور میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے اس واقعے سے یہ پیش کیا کہ جنات غیب نہیں جانتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس واقعے کو دلیل بنا کر قیامت تک کے لوگوں کے عقائد کو درست کر دیا کہ کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ جنات سے کوئی ایسا کام کرا لے اور وہ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو تھی وہ کیا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی تھیں، تو بیت المقدس کی تعمیر بھی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ وہ پوری کر لیں۔ یعنی اللہ نے جن سے کام کرانا ہوتا ہے نا، ان کو لمبی عمریں دے دیتا ہے۔ وہ مر بھی جاتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں ابھی نہیں مرے، اللہ نے وہ مشن پورا کروا لیا جس کو انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس طرح وہ کام بھی پورا ہو گیا اور اس کے بعد ان سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا عقیدے کی بھی اصلاح کروائی۔ بیت المقدس کے ناطے سے چونکہ سلیمان کا یہاں تذکرہ آیا تو تھوڑی سی بات کروں گی آپ کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور آف کورس مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں ان دونوں کے لیے محبت بھی بہت ہے، لیکن بیت المقدس بھی کوئی عام جگہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر تین مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں عبادت یا ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، جس میں ایک بیت اللہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس ہے۔ اس کے بارے میں چند روایات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور ساتھ دلوں میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں موقع دے کے ہم وہاں نماز پڑھ سکیں۔ امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی جو مقبول ہوئیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو شخص اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو، کوئی اور نیت دنیاوی غرض کچھ نہ ہو، تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی کہ جو یہاں داخل ہوگا نماز کے لیے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو ویسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا۔ ایک اور روایت ہے، امام سدی بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 12,000 گائے، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی۔ اس دن کی خوشی منائی، پھر صخرہ، پتھر ہے جس جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی براق کو باندھا تھا، صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی۔ سن لیجیے دعائیں، یا اللہ آپ ہی نے مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے ہیں جن سے بیت المقدس کی تعمیر پوری ہوئی، یا اللہ مجھے اس کی بھی توفیق بخشیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں، مجھے اپنے دین پر فوت کیجیے اور ہدایت کے بعد میرے دل میں کوئی ٹیڑھ نہ ڈالیے۔ پھر عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے آپ سے پانچ چیزیں مانگتا ہوں۔ تو بیت المقدس کے فضائل میں سے جو پانچ چیزیں صحیح روایت سے ملتی ہیں، نمبر ایک، جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ دوسری، جو آدمی کسی خوف اور خطرے سے بچنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دیں اور خطرات سے نجات بخشیں۔ تیسری چیز یہ کہ جو بیمار اس میں داخل ہو تو آپ اس کو شفا عطا فرمائیں۔ چوتھے، جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو تو اس کو غنی کر دیں، یعنی اس کی غربت دور کریں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو، جب تک وہ اس میں رہے، آپ اس پر اپنی نظر عنایت اور رحمت رکھیں، بجز اس شخص کے جو کسی ظلم اور بے دینی کے کام میں مشغول ہو۔ تب دیکھیے کہ ہر انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے پیار ہوتا ہے۔ میں یہ حدیث پڑھ رہی ہوں تو ساتھ ہی مجھے ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی وہ دعائیں بھی یاد آ رہی ہیں کہ جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت پہ مانگی تھی۔ انہوں نے ایک امام مانگا تھا، انہوں نے وہ نہیں مانگا۔ فرق نوٹ کر رہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم نے نسلوں کے لیے مانگا سب کچھ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھر کے لیے مانگا۔ اور آج دیکھیے کہ دونوں کا فرق دیکھیں، آج اس وقت ہم نہیں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم اس جگہ جا کر یہ کام کر سکیں، جو بھی دعائیں مانگ سکیں اور اپنے کریں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں یہ تڑپ ضرور ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی یہ ساری چیزیں اس طرح سے ملیں کہ واقعی پھر مسلمان اس کا حق ادا کر سکیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ موت کے بعد عصا کے سہارے حضرت سلیمان ایک سال تک کھڑے رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنات کو جب پتہ چلا کہ ان کی موت کو ایک خاص وقت گزر چکا ہے، تو ایک لکڑی کی دیمت انہوں نے چھوڑی، ایک دن رات میں جتنی لکڑی دیمت نے کھائی اس سے حساب لگایا کہ حضرت سلیمان ایک سال تک وہاں فوت رہے۔ یعنی کیسے پتہ چلا کہ وہ ایک سال تک رہے؟ وہ دیمک کے لکڑی کھانے کی رفتار سے ہوا، کہ یہ چھوٹی سی مخلوق بھی کیا بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کو ٹوٹل 53 سال 53 ایئرس کی عمر ملی تھی، 40 سال میں یہ سلطنت کے کام کرتے رہے، اور بیت المقدس کی تعمیر اپنی سلطنت کے چوتھے سال میں شروع کی۔ اللہ لے کے جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی عمارت ہے، اور کوئی مشینیں نہیں تھی، کوئی کرینیں نہیں تھی۔ اس کے بعد جتنی دفعہ بھی بنا وہ سب اس کی رینوویشن تھی، لیکن پہلی دفعہ حضرت سلیمان کے دور میں بنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔